सब कर निखरेगा जीवन, सब कर बनते देव महान, सबसे मिलता जीवन का सुख, सबसे मिलता जीवन दान। ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या से जीवन में आती है मधुरता, तपस्या से जीवन में आती है मधुरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता।
चर्चाएं तो ज्यादा नहीं करेंगे, कुछ योग अभ्यास अलग अलग तरीकों से और दो सुंदर संकल्प। पहला, हमने अपने जीवन का लक्ष्य क्या बनाया है, किसी लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं या ऐसे ही चल रहे हैं। जो बिना लक्ष्य के चलते हैं वो कहाँ पहुंचेंगे ये पता नहीं होता। सागर में एक शिप चल रहा हो और उसे पता ना हो कि पहुंचना कहाँ है तो कहीं भी नहीं पहुंचेगा। हमने अपने जीवन का क्या लक्ष्य बनाया है, केवल ये सुन के संतुष्ट नहीं हो जाना है कि लक्ष्मी नारायण बनना हमारा लक्ष्य है, उससे जीवन में कुछ आता ही नहीं, या कर्मातीत होना हमारा लक्ष्य है उससे भी कुछ उमंग आता नहीं। लक्ष्य का अर्थ ही होता है, लक्ष्य बनाने का मतलब होता है जीवन में विशेष उमंग उत्साह हो उसे पाने के लिए, लक्ष्य और वहां तक पहुंचने का प्लान। अगर हम एक छोटा सा लक्ष्य बनाते हैं, किसी को मधु बनाना है, इस डेट को जाना है, ये गाड़ी पकड़नी है, तो सब तैयारी होती है ना। केवल लक्ष्य हो कि मधुबन में जाना है, बाकी कुछ ना करें, न टिकट निकलवाएं, न छुट्टी लें, न पैसा इकट्ठा करें, तो मधुबन में पहुंचेंगे नहीं। छोटा सा उदाहरण है। हमारे भी जीवन का लक्ष्य क्या है, और सभी को अपने जीवन के छोटे छोटे लक्ष्य बनाने चाहिए, तीन तीन मास के छोटे दो तीन पॉइंट्स में। जैसे एक पॉइंट धारणा का ले लें, मुझे तीन मास पूर्णतया संतुष्ट मणि बनकर रहना है। पॉइंट्स बहुत मुरलियों में आती हैं। स्वमान ले लें दो तीन तीन मास के लिए, मुझे इन स्वमानों पर प्रैक्टिस करनी है। योग का लक्ष्य रख लें, डेली योग का चार्ट इतने तक पहुंचाना है, और हमें ये ख्याल में पक्की तरह आ जाना चाहिए कि संगम योग पर चाहे माया को जीतना हो, चाहे संगम योग का सुख पाना हो, चार घंटे रोज योग तो होना ही चाहिए। इससे कम वाले माया से कहीं ना कहीं हार खाते रहेंगे। कहीं क्रोध आ जाएगा, कहीं कोई लोभ आ जाएगा, कभी मैंपन आ जाएगा, कहीं टकराव हो जाएगा। चार घंटा योग बहुत अच्छा होना ही चाहिए, कुछ बैठकर कुछ कर्म में, जितना जो बैठे अपनी सेवाओं अनुसार बाकी कर्म में। और योग के बारे में बाबा ने ये बात स्पष्ट की ही है कि बिना कर्म योगी बने किसी का जीवन योग युक्त नहीं हो सकता। योग करना एक बात है, और जीवन को योग युक्त बनाना दूसरी इम्पोर्टेंट बात है। योग युक्त हम चाहेंगे सभी इस पे थोड़ा चिंतन कर लें। कई बार किसी किसी के साथ ऐसा होता है, वो योग तो बहुत अच्छा करते हैं, लगन से करते हैं, सवेरे भी उठेंगे, शाम को भी योग में बैठेंगे, और कोई प्रोग्राम है तो भी योग करेंगे, परंतु उनका जीवन योग युक्त बनता नहीं है। किसे कहते हैं योग युक्त जीवन? कर्मों में योग। और बोलो लक्षण क्या दिखाई देंगे भाई, इसकी स्थिति योग युक्त है। कुछ लक्षण रहेंगे, कुछ धारणाएं आएंगी, जिसको बाबा विदेही अवस्था कहते हैं। जैसे संतुष्ट आ जाएगी, मान लो कोई योग भी बहुत अच्छा करते हो लेकिन आत्म संतोष न मिल रहा हो, छोटी बातों में मन परेशान हो जाता हो, मान लो खाने की बात है, कभी खाना थोड़ा अच्छा नहीं बना, अच्छा नहीं लगा, बनाने वालों की गड़बड़ हो गई, तो जो ऐसी आत्माएं होंगी योगयुक्त वो उसमें ही संतुष्ट रहेंगे, कोई बात नहीं है, कभी अच्छा मिलता है, कभी थोड़ा हल्का मिल गया, कोई बात नहीं। और जो नहीं है संतुष्ट, उनके बहुत संकल्प चलेंगे। ऐसे ही कम से कम 10 धारणाएं सब निकालें जो अच्छा योग करने वालों के लक्षण दिनों दिन दिखाई देंगे, बढ़ते जाएंगे। बोलो वाणी बहुत अच्छी मधुर न कह के संयमित, उसमें सब आ गया, मधुर भी कम भी, न्यारा और प्यारा, बहुत सुंदर धारणा है। संसार में तो इस धारणा को कोई जानता नहीं है, जो अच्छा योग करेंगे उनमें ये चीज बढ़ती जाएगी, न्यारापन प्यारापन। इससे साक्षी भाव बहुत अच्छी धारणा है, साक्षी भाव होता जाएगा, अर्थात क्या क्यों खत्म होता जाएगा। महेंद्र भाई धैर्यता बहुत आ जाएगी, बिल्कुल ये प्रैक्टिकल धारणा। इसके साथ एक और जोड़ दें, रॉयल्टी और धैर्यता। गोविंद भाई अनासक्त होते जाएंगे, बहुत सुंदर चीज है ये हम सब के लिए। सब कुछ होते, खाते पीते, अच्छा पहनते, अच्छी जगह रहते, अनासक्त। आज वो है तो भी आनंद, और कल नहीं होगा तो भी आनंद। और चलो सुरेश भाई बहुत अच्छी अच्छी धारणाएं हैं, अभी सहनशीलता और त्याग वृत्ति भी आती जाएगी। सुरेश भाई बोलेंगे, हाँ ये तो आ गया, सोचो तब तक और अभी हैं। नाम मानसन से परे इसका त्याग हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है ये भी। पीछे वाले हॉस्पिटल वाले, नाम मुझे याद नहीं भाई, बोलो, साइलेंस में ज्यादा होते जाएंगे। परसों तरसों आपको बाबा की वो बात बहुत अच्छी लगी होगी, मैं तुम्हें अपना सारा ज्ञान देकर खाली हो साइलेंट हो जाता हूँ। भगवान हो रहा है ना धीरे धीरे बोलना बिल्कुल खत्म करता जा रहा है, ये लक्षण दिख रहे हैं। बाबा पूरा साइलेंस में चले जाना चाहता है, सब कुछ दे दिया, कुछ देने को बचा नहीं, भविष्य का तो मिलेगा ही वर्तमान के आधार पे, लेकिन ज्ञान फुल दे दिया है। मुरली सुने पिछले सीजन की, और कुछ बात तो थी नहीं, वही सदा खुश रहो, संतुष्ट रहो, बेफिक्र रहो, दो चार बातें रिपीट हुई। और चलो एकांत आकर्षित करेगा, पवित्रता सहज नेचुरल होती जाएगी, भावनाएं शुभ भावनाएं बढ़ती जाएंगी, प्यार और शुभ भावनाएं, सबसे प्रेम और शुभ भावनाएं बढ़ती जाएंगी। अर्जुन भाई संकल्पों की सिद्धि होती जाएगी। बहुत अच्छा। निमित्त भाव तीनों बोले धारणाएं, निर्माण निर्मल तीनों धारणाएं बढ़ती चलेंगी। ये सब बहुत बहुत तेजी से जीवन में आएगा। मुझे एक बात और याद आ रही, वो शुरू में तो नहीं होगी, सरल स्वभाव होता जाएगा। बाबा ने हलवे का उदाहरण दिया था, हलवा जब बन के तैयार होता है तो क्या हो जाता है, कढ़ाई छोड़ देता है, किनारे छोड़ देता है, चिपकता नहीं है। फिर चिपक रहा है माना तैयार नहीं है। तो आत्मा की स्थिति जैसे जैसे आगे बढ़ेगी सब किनारे छूटते जाएंगे। तो लक्ष्य बनाएंगे, फिर से वहीं आ जाएं। लक्ष्य के बारे में एक बहुत अच्छी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। सभी लक्ष्य बनाएं जरा तीन तीन मास का, मैंने उदाहरण लिया, दूसरे तीन मास में बना लें। मुझे पूरी तरह खुश रहना है, एक एक धारणा लेंगे, फिर बना लें मुझे साक्षी रहना है, नो क्वेश्चन, सोचना ही नहीं है कुछ, खेल को देखना है। बना लें मुझे परचिंतन से मुक्त रहना है। स्वमान बहुत सारे हैं, तीन चार सुना करें, जब जो अच्छा लगे वो कर लें तो बहुत अच्छा रहता है। लक्ष्य के बारे में एक इम्पोर्टेंट बात है, आप इसको अनुभव करके देख सकते हैं। जो भी लक्ष्य तीन मास का बनाए, तीन मास का, एक मास का, 15 दिन का, ये बात लौकिक कार्यों के लिए भी इतनी इम्पोर्टेंट है। जो भी लक्ष्य बनाए उसे सवेरे उठकर तीन बार लिख दें। एक बार भी लिखा जा सकता है, तीन बार इसलिए वो अंदर समा जाए मुझे ये करना है। तीन दिन तक लिख दें, उठते ही मुझे ये करना है, तो ब्रेन की सारी शक्तियाँ, यह इम्पोर्टेंट बात, ब्रेन की सारी शक्तियाँ हमें उस लक्ष्य को प्राप्त कराने में लग जाएंगी, सरल हो जाएगा। मैं एक अपना अनुभव सुनाऊं, मैंने एक से सुना था, स्वराज हमारा ग्रुप है नीचे, बहुत अच्छा, तो हम एक अभ्यास करा रहे थे, मैं स्वराज अधिकारी हूँ, सब कर रहे थे। उसमें एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस थी, मैं आत्मा स्वराज अधिकारी हूँ, भृकुटि सिंहासन पर हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मन बुद्धि की मालिक हूँ। बुद्धि को सबने आदेश दिया कि हे मेरी बुद्धि, अब किसी भी गंदगी को स्वीकार न करना, तुम्हें अपने अंदर सबके लिए शुभ भावनाएं भर लेनी है, जब भी अशुभ भावनाएं तो मुझे सावधान कर देना। तो मैंने कुछ दिन पहले ये सबने की थी प्रैक्टिस, बहुत अच्छी, तो मैंने कुछ दिन पहले एक और अच्छा संकल्प अपनी बुद्धि को दिया। आपको याद हो एक मास पहले मैं और मेरे पर बहुत गहरी मुरली अव्यक्त आई थी संडे को, तो मैंने अपनी बुद्धि को यही अभ्यास करके आदेश दिया, हे मेरी बुद्धि, मुझे मैंपन से पूरा मुक्त होना है, कहीं भी सूक्ष्म रूप में भी मेरे पास मैंपन आ जाए तो मुझे फट से बता देना। आ गया, क्योंकि मैंपन इतना सूक्ष्म है ना, वो चलता रहता है और हमें पता नहीं चलता, हम सोचते हैं हम मैंपन से मुक्त हैं। तो मुझे इसके बड़े अच्छे अनुभव हुए, ये बात एक मास की है, कहीं भी बिल्कुल अंतर मन की गहराई में भी कुछ जरा सा भी उठा ना, फट से ठक हुआ, नो ये मैंपन है। तो लक्ष्य बना लेना ऐसी सुंदर बात होती है। हम धारणाओं की एक लिस्ट निकाल सकते हैं आप, कम से कम 16 ऐसी धारणाएं, सारी नहीं, न्यारा प्यारा साक्षीपन सरलता सहनशील अनासक्त, ये सब जो बड़ी धारणाएं हैं हमारी, उपराम वृत्ति निर्भयता, उससे ऐसे कार्य करें आप, अपनी बुद्धि को आदेश दे सकते हैं। किसी को बहुत भय होता है ना, आपके पास भी कोई आए उसे आप ये सिखा दें कि अपनी बुद्धि को आदेश दे दें, तुम बिल्कुल मास्टर सर्वशक्तिवान हो, निर्भय हो, कहीं भी भय को स्वीकार न करना, अपने अंदर न आने देना, तो बुद्धि ये काम करने लगेगी। भय आएगा तुरंत याद आएगा, और नहीं मास्टर सर्वशक्तिवान हो, भगवान साथ है, डरना नहीं है। तो ये बहुत अच्छी विधि है पुरुषार्थ की, इसको सभी यूज करेंगे। लक्ष्य जीवन हमेशा कर्म क्षेत्र पर लक्ष्य के साथ चलना चाहिए, छोटे लक्ष्य, और योग का तो ये लक्ष्य बना ही दें कम से कम 4 घंटे, 8 घंटे की बात अलग है, वो बड़ी है, वहां तक पहुंचना लक्ष्य बना लें, लेकिन रोज 4 घंटे तो करना ही है। दूसरा एक भट्टी में स्वचिंतन करना है। भट्टी में जब हम बैठते हैं तो अपने को देखने का मौका मिलता है, अपने से बात करने का मौका मिलता है। एक बहुत अच्छा चिंतन हम सब के लिए है जो सदा भी है, मेरा संगम युग कैसे बीता। चाहे तो आप डायरी में लिखना 1-2 पेज, मैंने अपने संगम युग के 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल कैसे बिताए। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बात लिख सकते हैं, पर चिंतन में बीता या आत्मा के आनंद में बीता, कहीं ना कहीं व्यर्थ में समय बिताया या ईश्वरीय सुख लेते हुए समय बीता, टकराव में जीवन बीत गया या प्रेम और सुख भावनाओं में बीता, हल्के हल्के बीत गए ऐसे बस, हल्के हल्के या बहुत उमंग उत्साह अच्छे पुरुषार्थ करते हुए बीता। पुरुषार्थ में अप्स एंड डाउन की बात नहीं, वो तो होता रहता है। कैसा बिताया हमने अपना संगम युग और कैसे बिताएंगे आगे का संगम युग। अगर हमें 10 साल मिल जाते हैं तो हम अगले 10 साल ऐसे बिताएंगे, बहुत आनंद आएगा। ये स्वयं के पुरुषार्थ को स्वयं लिफ्ट देने की विधि है, इसे जीवन में कभी अलबेलापन नहीं आता। अब हम कुछ थोड़े थोड़े बीच में अभ्यास करेंगे। एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है जो सवेरे उठते ही रोज किया करें, 1 बार कम से कम, और 1 बार शाम को, बहुत अच्छी तरह सच्चे दिल से। क्या सूक्ष्म वतन में है हम, बाप दादा सामने, मैं थोड़े में बताता हूँ फिर प्रैक्टिस करेंगे। बाबा ने 1000 भुजाएं हमारे सिर के ऊपर फैला दी हैं, छत्र छाया, फिर बाबा दृष्टि दे रहे हैं, फिर बाबा ने मस्तक पर तिलक लगाया, वरदान दिए, उन्हें हम स्वीकार कर लें, फिर हम बाबा को थैंक्स देंगे। ये इतना काम, इसमें 10 मिनट कम से कम लगाएंगे, 15 भी लगा सकते हैं, बहुत इसमें सुखद फीलिंग होगी। चलिए अंदर लाइट करें, ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है, सरल है, संकल्पों के साथ है, जितने सुंदर संकल्प उतना ज्यादा आनंद। देखें अपने को आकाश के परे, ये सूक्ष्म लोक है, फरिश्तों की दुनिया, यहाँ परमानंद। दूरी पर खड़े दिख रहे हैं बाप दादा, बाबा के अंग अंग से किरणें फैल रही हैं गोल्डन, और मस्तक में ज्ञान सूर्य चमक रहे हैं। सब बाबा दृष्टि देते हुए मेरी ओर आ रहे हैं। पास आ गए अपनी हजार भुजाएं मेरे सिर के ऊपर फैला दी, और बोले बच्चे तुम अकेले नहीं हो, मैं हजार भुजाओं सहित तुम्हारे साथ हूँ। अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया, मस्तक पर तिलक लगाया, वरदान दिए बच्चे विजयी भव। विघ्न विनाशक भव, सफलता मोक्ष भव, आवाज सामने है, ये वही है जिसकी हमें युगों से तलाश थी। ये वही है जिसके दर्शनों के लिए हम युगों से इंतजार करते थे। ये वही है जिसके आने की राह हम हजारों वर्षों से देखते थे। ये वही है जिससे मिलने के लिए हम सब कुछ छोड़ जंगलों की राह लेते थे। सच्चे दिल से बाबा को शुक्रिया करेंगे। हे प्राणेश्वर, आपने मुझे सब कुछ दिया। हे ज्ञान के सागर, आपने मुझे दिव्य बुद्धि प्रदान की। अपना संपूर्ण ज्ञान देकर मेरे चित्त को प्रकाशित कर दिया। मेरी हजारों साल की शक्ति की खोज पूर्ण कर दी। मुझे स्वदर्शन चक्रधारी बना लिया। आपको बारंबार शुक्रिया। हे परम सद्गुरु, आप आकर हमारी जीवन मैया के खिवैया बन गए। जीवन की यात्रा में हम अकेले थे, आपने आकर हमें साथ दिया। आप हमारे खुदा दोस्त बन गए। शक्तियों और वरदानों से हमारी पालना की। अपना साथ और हाथ देकर हमें सर्वशक्ति संपन्न कर दिया।
अब आया है विकराल दिया।
ऐसे एक बार बाबा को सच्चे मन से शुक्रिया भी करनी है, सब कुछ दिया तुमने हमें। हम सब यज्ञ निवासी तो कितने भाग्यवान हैं। मैं सोचा करता हूँ कितने सुंदर स्थान दिए बाबा ने हमें रहने के लिए। बाहर जाते हैं ना, किसी के सेंटर में कितना छोटा होता है, रूम में निकल जाओ तो बदबू फैली होती है, चारों ओर गंदगी गंदगी दिखाई देती है, शहरों का शोर गुल शांति से भी नहीं रहने देता। कितना सुंदर स्थान रहने को दिया, अपना घर दे दिया हमें, यज्ञ के मालिक बना दिया, सेवाएं दे दी, इन्हें करो और अपना भाग्य महान बनाओ, निश्चिंत कर दिया, योग लगाओ और जितना चाहे ऊंचा उठ जाओ। ऐसा भाग्य किसी को प्राप्त होगा? सोच के देखो अपने भाग्य पर, तुलना करो बाहर वालों से, जिन्हें रात दिन कमाने की चिंता, बच्चों की चिंता, पति पत्नी के झगड़े, अनेक बीमारियों की समस्याएं, बिना मतलब आई हुई पड़ोसियों की समस्याएं। हम सबका जीवन भाग्य कितना सुंदर। मैं सोचा करता हूँ भगवान खिला भी अपने घर से रहा है, रख भी अपने घर में रहा है, कार्य भी अपने घर में दे दिया और कहा बस तुम भाग्य बनाओ। है ना अर्जुन, कोई नहीं हो सकता हम जैसा भाग्यवान। सवेरे उठते ही अपने को भाग्य को याद दिला दिया था। मैं जब रोज सवेरे चाय पीने आता हूँ, आजकल ठंडा मौसम, कभी बादल, कभी बाहर जाते हैं तो तुलना होती है ना, कितने सुंदर स्थान दिए बाबा ने हमें, करो तपस्या, शांत वातावरण, रिम झिम प्योर वाइब्रेशंस, बाहर के लोग भी बहुत आते हैं, हैरान हो जाते हैं यहाँ क्या है, कितनी शांति है यहाँ, सबके चेहरों पर कैसी खुशी चमक रही है, संतोष झलक रहा है। हम सब बहुत भाग्यवान हैं। जितना बाबा को जिस चीज के लिए थैंक्स देंगे, आजकल मनोविज्ञान की बहुत सुंदर रिसर्च संसार में फैलती जा रही है, जिस चीज के लिए थैंक्स करेंगे वही बढ़ती जाएगी। शरीर में बीमारी भी हो बाबा आपने मुझे बहुत अच्छा तन दिया, हेल्थ दी, आपको बारंबार शुक्रिया। हेल्दी होते जाएंगे, मेरे जैसा सुखी कोई नहीं, सुख बढ़ता जाएगा, बाबा को धन्यवाद दें। अब एक दूसरी पुरुषार्थ की सुंदर विधि, हम सभी भी बाबा के साथ अवतार हैं, जैसे ये दहे था नीचे और ऊपर बाबा ने हमें बुलाकर कहा जाओ बच्चे नीचे वो तुम्हारे लिए शरीर तैयार है, तुम उसमें जाके प्रवेश करो और जग का कल्याण करो, युग परिवर्तन में मुझे मदद करो, प्रकृति को पावन करो, जाओ नीचे। तो जो अवतार होता है उसपे नीचे के वातावरण का असर नहीं होता, यहाँ शांति है, यहाँ माया है, चारों अंधकार है, अवतार के लिए इसका महत्व नहीं है, वो तो इन्हें दूर करने आया है। तो गुड फीलिंग खुद को दे दें, मैं इस देह में अवतार हूँ, बिल्कुल न्यारापन फील करेंगे देह से। और कोई भी एक सुंदर अपने कर्तव्य का संकल्प दे दें, मैंने अवतार लिया है प्रकृति को पावन बनाने के लिए, मैंने अवतार लिया है देवकुल की आत्माओं को भगवान से मिलाने के लिए, मैंने अवतार लिया है इस धरा पर पुनः शांति की स्थापना करने के लिए। कोई भी एक संकल्प कुछ कुछ दिनों के लिए सुन लें। मेरा काम चारों ओर पवित्र वाइब्रेशन फैलाना है, संकल्प कर ले मैं अवतार हूँ पवित्रता का अवतार, जिधर भी दृष्टि डालूंगा नैनों से प्योर वाइब्रेशन फैलेंगे, प्रकृति को देखेंगे प्रकृति को प्योर वाइब्रेशन जाएंगे, जिस भी व्यक्ति को देखें हमसे प्योर वाइब्रेशन उसे मिलेंगे, ये संकल्प कर दें तो ये बहुत अच्छी विधि हो जाएगी, स्वयं को देह से डिटैच करने की भी और एक महान कर्तव्य करने में तत्पर हो जाएंगे और इम्प्योरिटी खत्म होती जाएगी, ये अपनी इम्प्योरिटी को पूरी तरह समाप्त करने की विधि है। जो बाबा ने कल कहा, घर तुम्हें तब ले जाऊंगा जब रिंचक मात्र भी यह पवित्रता नहीं रहेगी, हमें करना है सब काम। इसी के साथ मैं आपके सामने प्रकृति को वाइब्रेशंस देने का एक मनोरंजक तरीका रखता हूँ जिसमें मजा आए और हमें प्रकृति को रोज वाइब्रेशंस देने अवश्य हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमारी 5000 साल माँ बनकर पालना की है, अब खाली हुई है प्रकृति आके कि पानी दूषित, धरती में अन्न देने की शक्ति नहीं, वायु दूषित, आकाश गंदगी से भरा हुआ, सागर भी गंदगी से भरा हुआ, सब प्रकृति गंदगी से भर गई है, हमें इसको पवित्र वाइब्रेशन देने हैं। और ये याद रखेंगे, जो प्रकृति की इस तरह की सेवा करेंगे, प्रकृति न केवल चारों युगों में बल्कि अविनाश काल में सब कुछ देती रहेगी। जब लोगों को पानी नहीं होगा तो हमारे पास भंडारे भरपूर होंगे, सब कुछ देगी प्रकृति, और ये तन प्रकृति ये भी बहुत साथ देगी, छोटी मोटी बीमारी आएंगी चली जाएंगी, कष्ट नहीं पहुंचाएंगी। तो प्रकृति को सकास देने का एक बहुत इंटरेस्टिंग एंटरटेनिंग तरीका, मनोरंजक, रेड लाइट करें, 5-8 मिनट हम ये विधि अपनाएंगे और इसको एंजॉय करेंगे। संकल्प लें, मैं आत्मा इस देह में अवतरित हुई हूँ, मैंने इस देह में प्रवेश किया है, प्रकृति की कुटिया में आ बैठी हूँ, मैं पवित्रता की देवी, पवित्रता का फरिश्ता हूँ। कमलासन पर विराजमान, अंग अंग से सफेद किरणें चारों ओर फैल रही हैं। परम धाम में पवित्रता के सागर से बाबा उनकी पवित्र किरणें नीचे मुझ पर पड़ रही हैं, जैसे कि पवित्र किरणों की बरसात हो रही है। परमात्मा पवित्रता मुझ में समा रही है। अब मैं फरिश्ता आकाश में बाबा की किरणें मुझ में समाकर चारों ओर फैल रही हैं। अग्नि वायु और आकाश इन पवित्र किरणों को ग्रहण कर रहे हैं। सामने है धरती का गोला, मैं आकाश में, सामने ग्लोब, मेरे मस्तक से पवित्र किरणें निकल कर ग्लोब में समा रही हैं। Thank you. दूर दूर तक फैला हुआ सागर। हमारे नैनों से पवित्र किरणें निकलकर सागर में समा रही हैं। मेरे सामने खड़े हैं नौ ग्रह देव रूप में। हम उन्हें एक एक को दृष्टि दे रहे हैं। ये इंटरेस्टिंग तरीका ग्रहों को भी सकार दें, क्योंकि बहुत लंबा समय ये हमारे गुड फ्रेंड बनकर रहेंगे। अभी भी हमें इनको गुड फ्रेंड बना लेना है। हमारी इस तरह की ये योग भट्टी, देखो मेरा तो संकल्प रहता है ऐसी योग भट्टी मधुबन में तो चलती रहे। 25-25 भाई बहने हिस्सा लेते रहें, क्योंकि इससे ही हमारा यज्ञ मजबूत होता है। यज्ञ को कमजोर करने वाले कई आ जाते हैं, विघ्न आते हैं, और ये योग की शक्ति यज्ञ को निर्विघ्न बनाती है। सब जानते हैं दादी के समय में कभी भी कोई बात आती थी, दादी योग शुरू करा देती थी, बात खत्म हो जाती थी। हम सभी यज्ञ के रक्षक हैं। मैं जब कोई बात सुनता हूँ तो गीता की एक बात याद आ जाती है, तीसरे अध्याय में है, प्रजापिता ब्रह्मा ने यज्ञ रचकर ब्राह्मणों को दिया और कहा, हे वत्स, तुम इस यज्ञ से देवताओं को प्रसन्न करो, देवता तुम्हें मन इच्छित फल प्रदान करेंगे। मैं सोचा करता हूँ भगवान ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा यज्ञ रचकर हमारे हाथों में सौंप कर कहा, बच्चे लो इस यज्ञ को संभालो, देवकुल की आत्माओं को प्रसन्न करो, वो आएंगे यहाँ, वृद्धि करो। हम यज्ञ को कहाँ ले जा रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं या स्ट्रोंग बना रहे हैं, इसे जादू की नगरी बना रहे हैं या व्यर्थ से भर रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये यज्ञ भगवान ने रचकर हमारे हाथों में सौंप दिया है, इसकी सुरक्षा करना योग बल से ये हमारा कर्तव्य है। तो हम ऐसे ही जैसे आप सभी रुचि से योग भक्ति कर रहे हैं, दो दिन सदा ही करते रहना चाहिए। जब जब छुट्टी होती है, घंटों में भी दो दिन बीच में खाली होते हैं, सभी इस भक्ति का पूरा आनंद लें। अपनी उन्नति है हमेशा इसमें, यज्ञ को तो फायदा है ही, लेकिन हमारी अपनी बहुत उन्नति है, क्योंकि योग अभ्यास में एकाग्रता की बहुत जरूरत होती है। थोड़ी देर भी अगर योग करते हुए मन बुद्धि एकाग्र हो जाती हैं, तो बहुत गहरा सुख हमें प्राप्त होता है। इस सुख को हमें बढ़ाते चलना है, एकाग्र चित्त बनना है। बाबा का ये अव्यक्त महावाक्य है, तुम्हारी बहुत सुंदर साधना है बुद्धि को एकाग्र करने की। सचमुच में तो बुद्धिमान ही वो है जो अपनी बुद्धि को एकाग्र करे, जो अपने मन को शांत करे। बुद्धिमान वो है ही नहीं जिसका मन बहुत भटकता हो, खुद को भी परेशान करता हो। बुद्धिमान वो नहीं है जिसने अपनी बुद्धि में इधर उधर का बहुत कुछ भर लिया हो। बुद्धिमान वो जो अपनी बुद्धि को स्वच्छ कर दे, कुछ नहीं इसमें, स्वच्छ बुद्धि में ही तो भगवान बैठेगा। बुद्धि में गंदगी है तो बाबा बैठेगा कहाँ उसमें। हमें तो अपनी बुद्धि के मंदिर में बाबा को बैठाए रखना है, तो इसे क्लीन कर दें। कोई भी गंदगी जो हम इसमें भर लेते हैं तेरी मेरी की, पर चिंतन पर दर्शन की, बदले की भावना की, किसी के लिए मन में क्रोध की, इससे बाबा हट जाता है। ये सब बातें आते ही बाबा हट जाता है। हमें बाबा को बैठा कर रखना है, एकाग्र चित्त होना है, बहुत बड़ा सुख है। सार में एक बात कह दूं, जब हम देवता थे तो हमारे मन में एक मिनट में 8-10 संकल्प उठते थे। जो अच्छे योगी बनना चाहते हैं वो अपने मन की स्पीड को 8-10 पर ले आए प्रति मिनट, तो नेचुरल ये एकाग्र रहेगा चित्त। एकाग्रता का यह तो नहीं कि कुछ न सोचे, सुंदर विचारों का रस मन में भरता जाएगा, टेंशन आदि सब स्वतः, चिंताएं सब स्वतः किनारे हो जाएंगी, बहुत सारी एनर्जी हमारे अंदर इकट्ठी होती रहेगी। तो जो अच्छे पुरुषार्थी हैं उन सबको ये चाहिए कि वो अपने मन के स्पीड को नेचुरल ऐसा रूप दें कि हम ज्यादा सोच ही नहीं रहे हैं। 8-10 संकल्प प्रति मिनट, और इसके लिए 2-4 विधि अपनाएंगे। बीच बीच में शरीरीपन का अभ्यास करना, आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करना, स्वमान का अभ्यास करना, साक्षी भाव का अभ्यास करना, बस ये 4 चीजें बहुत ही सफल बना देती हैं हमें, और चित्त एकाग्र रहने लगता है। तो बहुत अच्छी तरह सभी योग का रस लेते रहें, जीवन ही योगी जीवन बन जाए, भावनाएं शुद्ध हो जाएं। पूर्वज बन जाएं। चिंतन करना अब योग में आगे, पूर्वज बन जाएं हम सब। बाबा ने हम सबको कह दिया है तुम पूर्वज हो, सबको प्यार और सुभावनाओं से पालना देने वाले पूर्वज, सबका कल्याण करने वाले पूर्वज। चले अभी इसी सोमन से योग करेंगे, क्लास की यही समाप्ति, और फिर आप सब योग अभ्यास करना। मैं पूर्वज हूँ सबका पालन करता, विष्णु समान।